نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. آج ہم انشاءاللہ تعالی ساتواں پارہ شروع کریں گے، اور اس میں ہم آج کے سبق میں کچھ اور احکامات دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی، کہ اللہ تعالی نے ہمیں اور کیا حکم دیے. جیسا کہ ہم پہلے پچھلے پارے میں دیکھ چکے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اسی کی آج کنٹینیوشن کریں گے. مگر پارا شروع کرنے سے پہلے تھوڑی سی بات آپ لوگوں سے کرنا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ دیکھیں، ہم سب قرآن پاک کے اس سفر میں لگے ہیں، اور اس کے اندر ہم اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کیوں یہ سفر کر رہے ہیں، ہم کیوں یہ سیکھ رہے ہیں. کیا ہم یہ کسی کو دکھانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں؟ کیا ہماری انٹینشن ہے؟ یہ ہم شروع میں تو دیکھتے ہیں، جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں تب تو ہم الحمدللہ اپنی نیتوں کا جائزہ لیتے ہیں، لیکن سفر میں کہیں وہ نیت کھو جاتی ہے اور ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم کیوں سیکھ رہے ہیں، ہمارا قرآن پاک یہ پڑھنے کا مقصد کیا ہے، ہم کیوں یہاں بیٹھے ہیں. تو تجدید نیت بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو آج ہم ساتواں پارہ شروع کرنے پر نیت کی تجدید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیوں پڑھنا ہے، ہم کیوں یہ وقت لگا رہے ہیں. سب اپنی دوبارہ نیت کا جائزہ لیں، دوبارہ اپنی نیت کو ریفریش کریں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالی آج ہم ساتویں پارے میں آیت نمبر 83 سے 93 تک کریں گے. وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب وہ سنتے ہیں، مَا جو اُنزِلَ إِلَى رَسُولِ، نازل کیا گیا رسول پر. کیا نازل کیا گیا رسول پر؟ قرآن کریم، وحی الٰہی، اللہ کا کلام سنتے ہیں. کون سنتے ہیں؟ اِذَا سَمِعُوا، جب وہ سنتے ہیں. یہ کس کے بارے میں آیات آئی ہیں؟ اصل میں ہم اس کو جوڑیں گے پچھلی آیت کے ساتھ، جس میں اللہ تعالیٰ نے نصارہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ مسلمانوں سے بنسبت دوسروں کے مودت رکھتے ہیں، قریب ہے مودت میں، اور ہم نے یہ پڑھا کہ ان کے اندر تکبر نہیں ہے. اور جب تکبر نہیں ہوتا نا، تو پھر انسان حق کو پہچان جائے تو اس کو مان جاتا ہے. جب تکبر ہوتا ہے نا، پھر انسان کہتا ہے میں نہ مانوں، میں نے نہیں مان کے دینا، چاہے سمجھ آ بھی جائے میں نے ماننا ہی نہیں ہے. جیسے ابو جہل میں تکبر تھا، جیسے یہود کے اندر تکبر تھا، تو ان کے اندر جو قصصین ہیں، جو ان کے راہب لوگ ہیں، درویش قسم کے لوگ، ان اور تکبر بھی نہیں یہ رکھتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ حق کو ماننے میں پہل کرتے ہیں. آج بھی جو ایسے لوگ ہیں وہ واقعی اسلام کو دیکھتے ہیں تو وہ پہچان جاتے ہیں، جو اپنے دین کے اندر بھی حق پہ ہوتے ہیں. سب نہیں اس سے مراد، تو ایسے عیسائی جن میں وہ خصوصیات ہیں جو ہم نے آخری آیت میں پڑھی چھٹے پارے کی، وہ جو ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، اور خاص طور پر یہاں پہ بات ہو رہی ہے نجاشی اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں. آپ کو پتا ہے حضرت جعفر بن ابی طالب، وہ جب حبشہ انہوں نے ہجرت کی تھی مسلمانوں کے گروپ کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ابھی مکہ میں ہی تھے، تو اس وقت انہوں نے جب ہجرت کی اور وہاں یہ لوگ پیچھے ہی پہنچ گئے، اور انہوں نے جا کے نجاشی کو بھڑکایا مسلمانوں کے خلاف، اور اس نے طلب کر لیا ان کو اپنے دربار میں. اور اس وقت حضرت جعفر تیار نے سورہ مریم کی آیات تلاوت فرمائی تھی، جس کا اثر نجاشی پہ بہت ہوا تھا، اور اس نے تنکا اٹھا کے کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس سے زیادہ کچھ نہیں، کیونکہ انہوں نے کہا تھا آپ ان سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھیں نا، ان کے بارے میں یہ کیا کہتے، باقی چیزوں سے تو متاثر ہو گیا نجاشی. तो इसी तरह फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत की, तो हिजरत करने के बाद आप वहाँ पे स्टेब्लिश हो गए, तब फिर नजाशी ने एक वफद भेजा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, और इस वफद के अंदर वो अपने इनके बड़े बड़े नसारा के उलमा और मशाइख भी थे, और इस वफद में कुछ मुसलमान भी थे, और ये वफद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उन्होंने कुरान पाक को सुना, तो ये लोग सुनते जाते थे और इनका क्या हाल हो रहा था, तौरा आयुना हम तफीदु मिनत दम, तुम देखते हो उनकी आंखों को बह पड़ती हैं आंसुओं से, मिम्मा आरफू मिनल हक, इससे जो उन्होंने पहचान लिया हक में से, जो उन्होंने हक है उसको जब पहचान लिया तो उनकी आंखों से जारों कतार आंसू बहने लगे। तो आप देखें जब नज्जाशी ने भी सुना तो उसकी भी आंखों में आंसू आ गए थे, और वो भी इतना मुतासिर हुआ था कुरान से। फिर जब इस ग्रोह ने, इस वफद ने आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से कुरान सुना, तो वो भी इस कदर मुतासिर हुए इस कुरान से, इस हक से, कि उनकी आंखें बह पड़ी। ये क्या जज्बा होता है, ये क्यों ऐसा होता है, उन पे इतना असर किया कुरान ने। ये कुरान पाक की तासीर है, ऐसे नहीं कि वो इसकी सिर्फ जैसे एक ट्यून या एक रिदम या इसको सुन के मुतासिर हुए और वो उनके दिल पे असर हुआ, जैसे बाज लोग आज भी कुरान पाक सुनते हैं उनको समझ नहीं आ रही होती लेकिन उनके दिल पे असर हो रहा होता है। वो कहते हैं यानी बाज लोगों के साथ उन्होंने ये एक एक्सपेरिमेंट किया कि उनको ना कुरान का पता है ना उनको अरबी का पता है, तो उनके सामने अरबी भी बोली गई और कुरान भी पढ़ा गया, तो उन्होंने कहा नहीं ये डिफरेंट चीज़ है, उनके दिल पे असर हुआ उसका, वो गैर मुस्लिम लोग थे। तो कुरान पाक का एक असर है, इसके अंदर एक सौती असर भी है, यानी आवाज जो इसकी जो जो इसका रिदम है ना वो भी असर करता है, लेकिन जो इसको समझ पाए तो वो तो उसका दिल को ग्रिप कर लेता है ये कुरान। सुभान अल्लाह, इसके अंदर जाहिर है अल्लाह का कलाम है, इंसान का नहीं है, तो जो सुनता है अगर उसकी फितरत सलीम है, अगर उसके अंदर तकब्बुर नहीं है, तो हक को पहचान जाता है वो। तो इन लोगों के साथ भी कुछ यही मामला हुआ, और आप देखें आज भी बहुत सारे, आप जब वीडियोस को कभी सर्च करें, बहुत सारे लोग जब वो इस्लाम लाते हैं, मैंने पिछले दिनों एक वीडियो शेयर भी की थी रामा पीस में, कि एक आदमी जब वो मुसलमान हुआ है, उसने कलमा शहादत पढ़ा, तो उसके बाद उसकी ये हालत थी, वो इस कदर फूट फूट के रोया है, यानी उसको देख के इंसान को रोना आ जाए, और वो जो इर्द गिर्द खड़े लोग हैं वो भी रोने लगे उसको देख के। ये क्या चीज होती है जब हक सामने आ जाता है, मिम्मा आरफू मिनल हक, इस वजह से कि उन्होंने हक को पहचान लिया। ये जो हक होता है ना, ये इंसान जब इसको पहचान लेता है, वो कलमा पढ़ता है, तो वो उसको अपनी एक तो किस्मत पे रश आता है कि अल्लाह मैं तो दुनिया में पता नहीं कहाँ भटक रहा था, मैं किन वादियों में घूम रहा था, तूने अपनी नजरे करम मुझ पे कर दी, मेरी आंखें खोल दी, तूने ये हक मुझे पहुंचा दिया, वरना मैं तो जहन्नम की आग में गोते खा रहा होता। वो जो उनको एक तड़प होती है ना अंदर, जैसे एक प्यास है, वो भी बुझती है इस हक को पाके, उसकी वजह से भी आंसू निकलते हैं, और आंसू इजहारे तशक्कुर के लिए भी निकलते हैं कि शुक्र है अल्लाह मैंने हक को पा लिया, शुक्र है अल्लाह ये हक मुझ तक पहुंच गया। तो ये एक अजीब ही कैफियत होती है, उनको मिलती है जो प्यासे थे और अब पानी उनको मिल गया, वो जो इजहारे तशक्कुर है, जो वो जज्बात अंदर से निकलते हैं शायद हम समझ ही नहीं सकते। लेकिन आप ये भी देखें कि जब जो लोग कभी उन्होंने कुरान नहीं पढ़ा हुआ, सुना नहीं हुआ, मुसलमान है, नाम के मुसलमान है, लेकिन फितरत सलीम है, जब उन तक भी हक पहुंचता है ना, तब उनकी भी आंखें बह पड़ती, और अल्लाह ताला ने सूरह अनफाल में फरमाया है ना कि जो अहले ईमान है, तो ये कुरान ऐसी तासीर रखता है कि जब वो इसको पढ़ते हैं तो इसकी आयात उनके दिल पे ऐसा असर करते हैं कि उनकी आंखों से आंसू बह पड़ते हैं। हाँ, मगर जब इंसानों के दिल सख्त हो जाएं या उनमें तकब्बुर भर जाए तो फिर यह हाल ये होता है कि कुरान पाक पढ़ा जा रहा हो, कुरान की मजलिस हो और वो खराटे ले रहे होते हैं, या कुरान पढ़ा जा रहा होता है, कब शुरू हुआ कब खत्म हो गया उनको कुछ पता ही नहीं है, उन्होंने ऐसे ही है कि सुना या ना सुना बराबर। ऐसे भी होते, जब दिल साफ ना हो, दिल में सख्ती हो, तो फिर ये होता है। हम बाज दफा सारी जिंदगियां लहक लहक पे पढ़ते रहते हैं, मगर कभी ऐसी कैफियत क्यों नहीं आती? इसलिए है कि समझ में ही नहीं आता कि हम पढ़ क्या रहे हैं, समझ ही नहीं है कि हम कह क्या रहे हैं। जब समझ आएगी तो फिर उस तरह से आंसू निकलेंगे, क्योंकि वो जो प्यासी जमीन को अब पानी मिल गया। सहाबाए कराम को देखें, कैसे वो कुराने पाक की आयात सुनते थे तो उनके दिल कैसे मोम हो जाते थे। हजरत उमर इसी वजह से तो मुसलमान हुए, कुरान सुन के। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई तकरीरें नहीं करते थे लोगों के आगे, उनको कुरान सुनाते थे, तबलीग के लिए कुरान सुनाते थे, और उन लोगों को समझ में आता था, इसलिए वो लोग मुतासिर होते थे। तो ये कुरान तासीर रखता है। आप देखें सहाबा की क्या हालत हो जाती थी कि एक दफा ऐसे एक वाकया आता है कि हजरत उमर के सामने कुराने पाक पढ़ा जा रहा था, तो उनकी हालत क्या हुई कि ऐसे रोने लगे, उन्होंने कुरान की बाज आयात सुनी तो ऐसे रोने लगे कि बीमार पड़ गए, बिस्तर पे पड़ गए। ये जो ऐसी आयात इसमें आती हैं, जिन लोगों को समझ आती है उनको पता चलता है कि आयात क्या कह रही है। लोग इबादत के लिए आ रहे थे लेकिन उनको पता नहीं था कि ये इनकी हालत इस वजह से हुई, इस खौफ की वजह से। तो कभी इंसान को खौफ आता है, कभी ये खुशी की नबीद सुनाता है, कभी ये तसल्लियां देता है, कभी ये मोटिवेट करता है कि दौड़ो नेकी की तरफ, कभी ये गुनाहों से बाज रखने के लिए ऐसी बातें करता है कि इंसान झंझोड़ दिया जाता है। अब देखिए हजरत उजैल बिन अयाज के पीछे अबू बकर बिन अयाश ये नमाज पढ़ रहे थे मगरिब की। कहते हैं कि जब उजैल ने अलहाकुम तकासुर को पढ़ा और लतारवुन्नल जहीन तक पहुंचे, तो इनके बेटे भी खड़े हुए थे नमाज में, वो बेहोश होकर गिर पड़े, और हजरत फुजैल को ये हिम्मत ना हुई कि वो आगे पढ़ सके। उनके लिए कुरान ऐसा असर करता था, क्यों बेहोश होकर गिर पड़े? आए आए इतनी तवज्जो से सुनना और उसको दिल पे लेना, ये इस तरह से वो लोग कुराने पाक सुना करते थे। अल्लाह अकबर। तो अगर हम भी ये चाहते हैं कि कुरान हमारे दिलों पर असर करे, तो दिलों की सख्ती से बचें, दिलों को नरम रखें, हक पहचान लें तो उसको फौरन मान जाएं। और उन्होंने सिर्फ यहीं तक नहीं कि बस आंखों से आंसू बहाए और उसके बाद कपड़े झाड़े और उठ के चले गए, उनकी जुबानों ने भी गवाही दी। यकुलूना रब्बाना आमन्ना, वो कहने लगे हैं हमारे रब हम ईमान ले आए, फख्तबना मा शाहिदीन, बस हमें लिख दे साथ उनके जो गवाही देने वाले हैं। वो कौन है जो गवाही देने वाले हैं? यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत की गवाही देने वाले, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही का पैगाम लेकर आए उसकी गवाही देने वाले। अल्लाह हमें भी उनमें लिख दे। अव्वलीन तो सहाबा कराम ही थे और उसके बाद जितने भी मुसलमान हैं, अल्लाह यानी हमें मुसलमानों में लिख दे, हमें शहादत देने वालों में से लिख दे। हम शहादत ही देते हैं ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत की, अल्लाह के एक होने की, इस कुरान के हक होने की, और जो तालीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुंचाई है इसकी गवाही देते हैं कि वो अल्लाह की तरफ से है। तो उन्होंने कहा ए अल्लाह हम ईमान ले आए हैं, हमें तू लिख दे शहादत देने वालों में से जिन्होंने तेरे दीन की शहादत दी है, यानी वो मुसलमान हो गए। शहादत हक भी एक बड़ा मर्तबा है, इसलिए कि बाज लोग पहचान भी लेते हैं लेकिन इतने ढीठ होते हैं कि मान के नहीं देते। आपका क्या ख्याल है, अबू जहल पहचाना नहीं था? अबू तालिब पहचाने नहीं थे, पहचान गए थे लेकिन मान के नहीं दिए। यहूदी पहचाने नहीं थे क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? पहचाने थे, मानते नहीं थे, लेकिन इन लोगों के अंदर तासुब नहीं था ना। तो देखिए, पहचाना, आंखों में आंसू आए, वो फौरन कलमा हक बोल दिया, फौरन दुआ करने लगे अल्लाह से। और वाकई जब इंसान का दिल नरम हो ना, जब आंखों में आंसू आए, फौरन दुआ कर लिया खान, क्योंकि वो दुआ जो होती है ना, वो दिल से निकलती है, और जो दिल से निकली हुई दुआ होती है वो अल्लाह के यहाँ कबूल होती है। आगे पीछे शायद हम जो दुआएं करते हो, रस्मी करते हो, या ऐसे ही बस बोल दिया, अल्लाह नेक बना दे, अल्लाह लायक बना दे, अल्लाह जहन्नुम से बचा दे, कोई अंदर दिल ही नहीं है, कोई पता ही नहीं क्या पढ़ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। लेकिन जिस वक्त इंसान का दिल नरम होता है, आंखों से आंसू जारी होते हैं, उस वक्त दुआएं किया कर। तो उन्होंने सुभान अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या सुना था? सूरह यासीन सुनी थी। तो उनकी, देखो उनके ऊपर कैसे रिक्कत तारी हो गई, उनके जो जज्बात हैं अल्लाह को इतने पसंद आए कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक की जीनत बना दी है। रहती दुनिया तक लोग पढ़ते रहेंगे, और इसी तरह जो भी बाद में आने वाले भी हैं, जो भी सुनेगा इस कुरान को, और उसका यही हाल होगा, अल्लाह ताला उसको क्या इनाम देगा, वो आगे आगे आएगा कि अल्लाह ताला कितना उनसे राजी हो जाता है, जो तासुब को छोड़ देते हैं, जो ही बात समझ आती है फौरन मान जाते हैं, जो ही समझ आ गई फौरन इकरार कर लिया, ढीठ नहीं बने, हठधर्मी नहीं दिखाई। ये नहीं कहा अभी हम घर जाके सोचेंगे, अभी हम पता नहीं क्या बनता है, देखते हैं ना, अभी सोचते हैं, देखें मशवरा करते हैं, अभी हम तो इस तरह से करते हैं ना, नहीं। बहुत सारे आज भी ऐसे लोग हैं, एक हिंदू औरत मिली थी, तो उसने कहा कि मुझे पता है कि ये हक है, मैं मानती हूँ, मेरा दिल कहता है, लेकिन मैं इस्लाम नहीं ला सकती, इसलिए कि मेरा शौहर है, मेरे बच्चे हैं, सब मुझे छोड़ के चले जाएंगे। बहुत पुरानी बात है, उस वक्त ये दिल में आता है कि देखो ये आज ना, हम सोचे खुद अपने ऊपर रख के, हम तो मुसलमान घरानों में रहते हुए अपने रिश्तेदारों से इस कदर डरते हैं कि हम हक मान के भी और उसका इजहार नहीं करते, मुंह से बोलते नहीं है, चुप रहते हैं, क्योंकि हम डरते हैं ये लोग हमसे क्या रवैया रखेंगे, फिर ये हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फिर हमें ये बातें सुनाएंगे। उन्होंने तो ऐसी कोई परवाह नहीं की, इसीलिए तो अल्लाह को वो प्यारे लगे ना, अल्लाह ने उनका जिक्र कर लिया। तो जब हक सामने आ जाया करे तो फिर देर ना किया करें। वो कहते हैं वो माला ना लानू मिनु बिल्लाही वो माजा आना मिनल हक, हमें क्या है कि हम ना माने अल्लाह को और ना माने जो हक हमारे पास आ गया, हमें ऐसा क्या है, यानी हम क्यों ना ही मान ले, हमारे पास क्या एक्सक्यूज है अब, क्यों हम डिले करें, ठीक है, हम क्यों ना माने, यानी वो अब आगे कह रहे हैं, हम तो सोचते ही रहते हैं ना, हम क्यों मान जाएं, हमारे पास तो ये प्रॉब्लम, उन्होंने तो नहीं सोचा हम वापस जाएंगे तो कितनी हमारे घर वालों में एक्सेप्टेबिलिटी होगी, हमारी हमारे माशरे में कितनी होगी, हमें लोग क्या कहेंगे कि तुम गए थे तो फिर तुम आए, गए ईसाई थे और वापस आए तो मुसलमान हो के आ गए, ये तुमने क्या किया, अपना दीन मजहब ही छोड़ दिया। नहीं, उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। सुभान अल्लाह, हक देखा और मान लिया। और हम उम्मीद रखते हैं, नून शुरू में आ गया ना, तो हम तमा रखते हैं, तमा क्या होती, लालच रखना ना, यानी किसी चीज की ख्वाहिश करना बहुत ज्यादा। हम उम्मीद रखते हैं कि युदखिलना, दाखिल करेगा हमको रब्बुना, हमारा रब, मा साथ अलकौम सालेहीन, साले लोगों के साथ हमें दाखिल कर दे, हम ये उम्मीद रखते हैं हम, यानी अब हम ईमान ले आए हैं, हम अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि वो हमें साले लोगों के साथ अता फरमा दे। साले लोगों का साथ तो बड़े बड़े अंबिया ने मांगा, कि जो जब यूसुफ अलैहिस्सलाम, इतनी बड़ी बादशाहत भी मिल गई है, तो तब भी दुआ क्या कर रहे हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम, कि उनकी दुआ है वालहिकनी बिस्सालिहीन, दुआ का आखिर है कि अल्लाह सालिहीन के साथ मिलाना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जो आखिरी वक्त है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी यही दुआ है कि सालेहीन का साथ देना। रफीकुल आला जो है, बाज कहते हैं कि सालेहीन का साथ है, तो सालेहीन का साथ इतना प्यारा साथ है कि दुनिया में भी ये साथ मांगना चाहिए कि अल्लाह हमें सालेहीन की सुहबत अता फरमा, और आखरत में भी मांगना चाहिए कि ए अल्लाह सालेहीन के साथ हमें उठाना, वहां पे भी सालेहीन के साथ उठाना, क्योंकि सालेहीन का अंजाम अच्छा होगा, सालेहीन अच्छी जगहों पे होंगे, और वहां पे भी जिसको दुनिया में उनसे मोहब्बत है उसका दिल करेगा मैं वहां पे भी अबदी जिंदगी में उनके साथ ही रहूं। तो वो ये मांग रहे हैं, तो सालेहीन के साथ का क्या फायदा होता है दुनिया में? इंसान हदीस में क्या आता है, इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है, और इंसान वही करता है अक्सर जो उसका दोस्त कर रहा होता है, वरना दोस्त ही नहीं रहते। तो जब सालेहीन की कंपनी होगी तो जाहिर है आपको मोटिवेशन मिलेगी नेकी पे, बुराई से बचने के लिए आपको एक हौसला मिलेगा। और सालेहीन कौन है? सालेहीन के बारे में आता है कि वो अल्लाह वाले, जिनको देख के अल्लाह याद आ जाए, या जिनके साथ बैठ के आपके इल्म में इजाफा हो। याद रखिए, बुरी मजलिस से अकेले रहना बेहतर है, और अकेले रहने से अच्छी मजलिस बेहतर है। तो सालेहीन का साथ वो माहौल है असल में जो आप मांग रहे हैं, कि जिससे भी अल्लाह ताला के और करीब हो जाऊं। असल मकसद क्या है कि अल्लाह का कुर्ब मिल जाए ना, और उसके लिए ड्राइविंग फोर्स कौन सी होगी, उसके लिए मोटिवेशन कहाँ से मिलेगी? सालेहीन के साथ से। ठीक है, तो इसलिए दुनिया में भी चाह करें, दुआएं किया करें, अल्लाह यहाँ पे भी सालेहीन का साथ देना, और आखरत में भी सालेहीन के साथ ही रखना। और वो लोग जो यहाँ सालेहीन का साथ नहीं चाहते, उनसे एलर्जी महसूस करते हैं, उनको वो अच्छे लगते हैं जो अल्लाह की हदों को तोड़ने वाले हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनको किसी चीज की परवाह नहीं, जो अपनी मनमानियां करते हैं, जो वैसे चलते हैं जिधर को दुनिया चल रही है, जिनको उन लोगों का यहाँ पे साथ पसंद है, तो फिर जिनके साथ यहाँ होंगे उनके साथ ही वहां होंगे, जिसके साथ मोहब्बत होगी उसी के साथ रहेंगे वहां पे। हदीस से भी यही पता चलता है, इंसान जिसके साथ मोहब्बत करता होगा उसी का साथ उसको मिलेगा वहां। तो सालेहीन से जो मोहब्बत करने वाले हैं उनको उनका साथ मिलेगा, और जो ऐसे लोगों से मोहब्बत करते हैं जो बिल्कुल उलट चलने वाले हैं, तो फिर सोचें कि उनका अंजाम क्या होगा। तो ये हमारी दुनिया और आखरत की जरूरत है, तो ऐसे लोगों को। अच्छा, अब उन्होंने कितनी प्यारी दुआ की कि अल्लाह हमें, अब ईमान तो ले आए हैं, अब हमें ऐसी कंपनी भी मिल जाए, अल्लाह ऐसा माहौल भी दे देना, क्योंकि इंसान को फौरन फिक्र होती है ना, आए मैं इस रास्ते से कहीं हट ना जाऊं, आए इस रास्ते की परेशानियों से मैं कहीं मेरे कदम लड़खड़ा ना जाए। जब इंसान नया नया दीन पे आता है ना, तो उसको बहुत जरूरी है कि वो सालेहीन का साथ मांगे ताकि उसको स्ट्रेंथ मिले। ठीक है, तो सालेहीन का वो साथ मांगते हैं, अल्लाह ताला ने उनका क्या फिर बताया, फअसाबहुमुल्लाह, तो बदला दे दिया उनको अल्लाह ने। अब माजी है ये, लेकिन मुस्तकबिल के लिए अभी तो नहीं ना बदला मिला, क्योंकि आगे है बीमा कालू जन्नतिन तजरी मिन तहतिल अनहारु खालिदीन फीहा, जन्नतों का बदला तो अभी नहीं मिला। गो ईमान के अपने समरात दुनिया में भी मिलते हैं, लेकिन जन्नत अभी नहीं मिली, फिर क्यों कहा गया, माजी क्यों इस्तेमाल हुआ? जब कोई चीज कंफर्म होती है ना, तो फिर उसके लिए माजी का सीगा इस्तेमाल किया जाता है कि ये ऐसे ही है जैसे कि बात हो चुकी, अल्लाह दे चुका, अल्लाह ने दे दिया उनको। बीमा कालू, बवजह उसके कि उन्होंने कहा, उनके कॉल की वजह से ही दे दिया, अभी तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं, क्या सिर्फ कॉल पे जन्नत मिल सकती है? देखें, बात यह है कि उनका सिर्फ कॉल नहीं था, ये उनकी डिटर्मिनेशन थी कि अब हमने इस रास्ते पर ही चलना। और फिर दूसरी बात ये कि आपने वो हदीस सुनी होगी, बहुत दफा मैंने सुना ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाज दफा इंसान अपने मुंह से ऐसी कोई बात निकालता है, अल्लाह ताला को इतनी वो पसंद आती है कि उसके बदले में अल्लाह ताला उसको जन्नत अता फरमा देता है। बताई हुई ना आपको बात, तो बीमा कालू अल्लाह, उनकी ये बात इतनी जो दिल से निकली हुई उनकी तमन्ना थी, और उनके दिल से निकला हुआ इकरार था ना कि आमन्ना, हम ईमान ले आए, तो बेइख्तियार पुकार उठे ये कुरान सुन के। अल्लाह कुरान का ऐसा असर हमारे दिलों पर भी अता फरमा कि हमारे दिल कुरान के असर से और इसकी जो तासीर है, इसकी जो इसका जो पैगाम है, अल्लाह ताला हमारे दिल भी इससे नरम हो जाए। अल्लाह हम भी इस तरह अमल के लिए ताज़ा दम अपने आप को महसूस करें और हमारे अंदर भी जोश आ जाए इस कुरान को सुनने के बाद, कि हम दौड़ने लगे तेरे रास्ते पे। तो उन्होंने जो कहा उसकी वजह से अल्लाह ताला उनको जन्नत तजरी मिन तहतिल अनहार खालिदीन फिया, वो बागात अल्लाह ने दे दिए उनको जिनके नीचे नहरें बहती हैं, हमेशा रहने वाली हैं उसमें। याद रखें कि जन्नत में जाने के बाद इंसान को जो एजाज मिलेंगे, ऑनर्स मिलेंगे, पांच हैं वो ऑनर। वो पांच ऑनर क्या हैं? एक यही है, खालिदीन फीहा, हमेशा रहने वाले उसमें, अब किसी ने नहीं निकालना। एक और ऑनर क्या है कि कभी अब कोई बीमारी नहीं आनी, हमेशा सेहतमंद रहेंगे। और ये उनसे जाके पूछें जो बीमार होते हैं कि बीमारी क्या चीज होती है, कि इंसान को लगता है कि सारी दुनिया की नियमतें एक तरफ है और सेहत एक तरफ है, उनको तो लगता है कि सबसे बड़ी नेमत ये सेहत मिल गई ना तो सब कुछ ही मिल गया। ठीक है, अच्छा और क्या एजार है? ये दो एजाज हो गए। तीसरा ऑनर क्या मिलेगा? नहीं, तीन हो गए ना। तीसरा ऑनर क्या मिलेगा कि कभी बूढ़े नहीं होंगे, हमेशा जवान रहेंगे, और उनके चेहरे 14वीं के चांद की तरह चमकते होंगे। सुभान अल्लाह, ये एक एजाज है। फिर ये आखिरी बात कि मौत कभी नहीं आएगी। और अब ये मुझे गड़बड़ हो गई कि कितने हुए, मैंने आपको कितने बताए, मगर एक और एजाज जो आखिरी है वो ये कि अल्लाह की रजा, कि अल्लाह ताला कभी नाराज नहीं होगा। अब इनको गिनने कितने हो गए, और फिर आप नंबरिंग करके लिख लें कि इतने एजाज मिलेंगे उसको जब वो जन्नत में दाखिल होगा। तो बार बार कुरान पाक में आता है खालिदीन फिया खालिदीन, क्योंकि जब भी कोई बहुत पसंदीदा चीज हमें मिल जाती है ना, एकदम साथ ही क्या धड़का लग जाता है, क्या है कहीं मुझसे छीन ना जाए, आए कहीं मुझसे दूर ना हो जाए, आए कोई ले ना ले मुझसे। तो जब जन्नत में इंसान जाएगा तो उसको ये खुशखबरी दे दी जाएगी, हमेशा रहने वाले हैं, अब नहीं कोई निकालेगा, फिक्र ना करो। इस दुनिया में भी नियमतों के जवाल से हम डरते हैं ना, कोई प्यारा है तो उसकी जुदाई से डरते हैं, कोई नेमत है तो उसके छिन जाने से डरते हैं, तो वो नहीं छिनेंगी कभी। और जालिक जज़ाउल मोहसिनीन, और ये बदला है मोहसिनीन का, नेकोकारों का। पहले भी आपको मोहसिनीन का बताया, वो लोग जो ऐसे काम करते हैं जैसे कि वो अल्लाह को देख रहे हैं, और अगर ऐसे दर्जे पे नहीं जा सकते तो कम से कम उनको ये जरूर याद रहता है कि अल्लाह हमें देख रहा है। असल में इनको मोहसिन क्यों कहा गया? इसलिए कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी शरीयत पर भी अमल किया और फिर इस्लाम को भी देखा तो पहचान के उस पे भी ईमान लिया। और मोहसिन कौन होता है? जिसके कामों में हुसन होता है, वो चलावा काम नहीं करता, बस चल चलाओ का काम, अच्छा बस मारे बांधे का कर लिया, मारे बांधे की नमाजें, मारे बांधे के रोजे, बस क्लासें भी ले रहे हैं लेकिन जैसे तैसे ही करके ले ली, आधी गाड़ी में सुनी, आधी किचन में काम करते हुए सुनी, आधी लेटे हुए सुनी, आधी कुछ और करते हुए सुनी। तो ये एहसान का लेवल थोड़ी है। हर अपनी नेकी में कोशिश करें, ये एक दिन में नहीं होगा, हर नेकी में कोशिश करें कि एक लेवल ऊपर जाए। एक्सीलेंस का लेवल ऐसे नहीं मिल जाता, मोहसिनीन वो जो है एक्सीलेंस के लेवल पे काम करने वाले, स्टेप बाय स्टेप होगा। जैसे हम अपनी नमाजों को थोड़ा बेहतर करें, फिर थोड़ा बेहतर करें, फिर तो इस तरह लेवल्स हैं, तो आप इंशाल्लाह फिर एक्सीलेंस पे पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर परवाह ही नहीं है किसी एक्सीलेंस पे करने की, बस जो चल रहा है ना, जो 10 साल पहले मैं नमाज पढ़ी थी वही आज है, जो 10 साल पहले मैं रोजा रख रही थी वो याद है, जो मेरे इल्म का लेवल ये, जो मेरे खुशू का लेवल, जो मेरे खुदा खौफी का लेवल, जो पहले था, जो बचपन में था, वो ये आज भी चल रहा है। और कोई अपने अंदर दिल में ये तमन्ना नहीं है कि मैं अपने आप को बेहतर करूं, इससे मैंने आगे बढ़ना है। ये स्टेज तो मेरा पिछले साल भी था, इससे आगे मैंने क्या अचीव किया, ये है। फिर कि इंसान के अंदर ये जब तलब होती है ना, फिर वो एक दिन आगे बढ़ते बढ़ते एक्सीलेंस पे पहुंच जाता है। जैसे आपने जब खाना पकाना सीखा होगा, रोटी बनानी सीखी होगी, तो उस वक्त क्या कैसी बनती होगी, कोई कोना इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, खाना कोई आधा कच्चा आधा पक्का, जैसा तैसा भी बन गया, कभी जल गया, कभी कुछ हो गया। लेकिन फिर आहिस्ता 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 बेहतर करते गए करते गए, और आपको दिल भी था कि मैं बेहतर करूं, इससे ज्यादा अच्छा करूं, तो फिर आपने प्रैक्टिस कर करके उसके अंदर बेहतरी लेकर आए, और एक दिन आप माहिर हो जाते हैं। तो इसी तरह नेकियों में भी, नेकियों पे वहीं नहीं खड़े रहना जहां पे बहुत पहले थे, जहां से स्टार्ट किया था, नेकियों में भी उसकी क्वालिटी को बेहतर से बेहतर करना है। क्या उसमें हुसन पैदा करना है। अब हम कहते हैं हमने सारा कुछ ही कर लिया, नमाज भी हम पढ़ते हैं, कुरान भी हम पढ़ते हैं, फलान चीज भी हम करते हैं, वो हमने उंगलियों पे ना गिनी हुई है, तो हमारे पास एक लिस्ट है, बस हम उसको देख देख के खुश होते हैं। मैं तो सारा कुछ ही करती हूँ, देखो मैं ये भी ये भी ये भी नहीं। देखें आप अगर नमाज पढ़ती है ना, तो देर इज ऑलवेज अ रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट, उसमें बेहतरी के और ऑलवेज एक और लेवल होगा जिसको आपको अटेन करना चाहिए, एक अगला दर्जा होगा जिस पे आप आज हैं उससे बेहतर होगा। देखिए एक बच्चा नमाज पढ़ता है और एक बड़ा नमाज पढ़े, कोई फर्क ही नहीं। अच्छा फिर बड़े ने भी नमाज पढ़ ली, लेकिन एक वो जो नमाज सहाबा कराम की होती थी, एक वो नमाज जो नेक लोगों की होती थी, जो हमारे असलाफ की होती थी, जो अम्बिया की होती थी, उनकी नमाजों का भी तो हम पढ़ते हैं ना कैसी होती है। लेकिन अगर ये सिर्फ नमाज में नहीं, हर नेकी के काम में, तो इसमें दर्जे होते हैं, नेकियों में भी दर्जे हैं। अब आप नेकी में एंटर तो हो गए, उस आपको आपको एक कॉलेज में एडमिशन लेना था, आपको एडमिशन मिल गया, बहुत बड़ा कॉलेज, बहुत अच्छा कॉलेज। अब उसके बाद ये थोड़ी ही कि वैसे एडमिशन ले लिया तो बस अब आप ये ही कहती जाए मैं तो वहां पे दाखिला हो गया, मैं तो वहां की स्टूडेंट। नहीं, फिर आगे पढ़ाई में भी आप आगे से आगे बढ़ेंगे ना, एक ग्रेड से अगला, अगले से अगला, अगले से अगला। तो हम जिस लेवल पे है ना, हम सारी जिंदगियां भी चलते रहें और इम्प्रूवमेंट की कोशिश करते रहें, तब भी गुंजाइश होगी मजीद कि हम इम्प्रूव करें। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि बस हमने आज 100 आउट ऑफ 100 पे पहुंच गए, अब इसके बाद कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत ही नहीं। कभी कैरेक्टर में जरूरत होगी, कभी इबादत में भी जरूरत होगी, कभी आपके और मामलात में जरूरत होगी, हर चीज में जरूरत है। तो उंगलियों पे ये गिन के लिस्टें बना के सिर्फ खुश ना हो जाया करें। अब इन कामों को आप देखें, मैं इनमें किस लेवल पे हूं, क्या मैं एक्सीलेंस पे पहुंच गई हूँ, नहीं पहुंची। आप अगर कोई देखें, अगर कोई 50 नंबर ले रहा है तो ठीक है, वो उससे तो बेहतर है जो 30 ले रहा है, लेकिन अभी उसको और 50 तक के उसके पास भी तो दर्जे हैं जहां उसने पहुंचना है। हम हमेशा देखते रहते, नहीं मैं उससे तो अच्छी हूँ, मैं उससे तो अच्छी हूँ, लेकिन आप एक्सीलेंस पे तो नहीं है ना अभी भी। इसी तरह जो 60 पे है वो उससे तो बेहतर है जो 50 पे है, लेकिन वो भी अभी पीछे है, उसको भी अभी आगे बढ़ना है। जो 70 पे है, अच्छा है, वो अच्छे नंबर है उसके, नंबर से मतलब ये है कि नेकियों में, मैं आपको जस्ट लेवल्स बता रही हूँ। जो 70 पे है वो 60, 50, 40 वाले से बेहतर है, लेकिन उसके पास भी अभी गुंजाइश है कि वो और अपने आप को बेहतर करे। तो कभी मुतमईना होके बैठ जाए करें, हमेशा गुंजाइश है कि मैं इसमें बेहतर करूं। आपकी पढ़ाई में गुंजाइश है कि आप बेहतर करें, बस सिर्फ एक क्लास ले लेना काफी नहीं है, मैंने सुन तो लिया ना, नहीं इसमें कैसे और इम्प्रूव करूं, कैसे बेहतर बनाऊं, मैंने मोहसिन बनना है। क्योंकि आगे आएगा, आज का सबक इसी पे खत्म होना है कि अल्लाह को मोहब्बत है मोहसिन से। तड़प ना जाए हमें, हम ये सोच के कि अल्लाह जिनसे मोहब्बत करता है, हाय मैं अभी तक उनमें शामिल नहीं हुई, मुझे भी उनमें शामिल होना है। जिसको अल्लाह की मोहब्बत चाहिए तो शामिल हो ना उनमें, कोशिश करें ना इसकी। हम हमेशा पूछते हैं पता नहीं अल्लाह को मुझसे मोहब्बत है कि नहीं है, कैसे मुझे पता चले। तो कैसे पता चले, आप वो देख लें कुरान पाक में कहाँ कहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह को इनसे मोहब्बत है, इनसे मोहब्बत है, इनसे मोहब्बत है, बन जाए वो। कोशिश करें वैसे बनने की, ठीक है। वल्लदीना कफरू वकज्जबू बिआयातिना, वो लोग जिन्होंने कुफर किया इनकार कर दिया, अब वो ऐसे भी थे जैसे यहूदी जो ढीठ ही बने रहे, हक तो उनके सामने भी आया, बस नहीं मानना नहीं मानना मैं ना मानू। अब वो जो ढीठ किस्म के लोग होते हैं ना, जिनको आप जितना मर्जी उनके साथ सर खपा लें, उन्होंने बस कहना होता है हमने नहीं मानना, ये नहीं कि उनको हक नहीं समझ आया होता, बस मान के नहीं देना। वो कज्जा वो भी आए आते हैं, और इससे भी बढ़ के ये कि और झुटलाया आयतों को अल्लाह की। देखिए अल्लाह को तो सारे ही मानते हैं, मैं बताऊं आपको कि कोई दीन वाला मजहब वाला भी आप उठा के देख ले, वो ये कहेगा कि हाँ एक खुदा तो है। मसला तभी आता है जब उसकी आयात सामने आती हैं कि आयतों को मानते हो, जो उसने फरमाया उसको मानते हो, वहां पे नहीं। तो कत्ता वो भी आयत, वो झुठलाते हैं आयात को। उलाई का अस्हाबुल जहनीम, ये हैं जहन्नुम के साथी, और ये सबसे बड़ा खसारा है। पता है कि जिस चीज से हमें सबसे ज्यादा डरना चाहिए वो क्या है? हम किन चीजों से डरते हैं? हम डरते हैं जॉब ना चली जाए, बीमार ना हो जाऊं, फकरो फाका ना आ जाए, आई किस्मत खराब ना हो जाए, किस्मत ना फूट जाए, ये नुकसान ना हो जाए, वहां नुकसान ना हो जाए, ऐसे इन चीजों से डरते हैं ना, कोई तबाही ना आ जाए मेरे घर पे, कुछ ऐसी बस चीजों से डरते रहते हैं। हालांकि जो सबसे ज्यादा डरने वाली चीज है, सबसे ज्यादा खौफ खाने वाली चीज है, वो ये है कि अल्लाह ताला मुझसे कहीं नाराज ना हो जाए, तो मुझे मुझसे नाराज हो के कहीं वो मुझे जहन्नुम में ना डाल दे, ये है सबसे बड़ी खौफ करने वाली चीज। और सबसे बड़ी खौफ करने वाली चीज ये है कि मैं इससे डरूं कि अल्लाह ताला के दीदार से कहीं मैं महरूम ना हो जाऊं। जैसे बहुत सारे लोगों को अल्लाह का दीदार हो रहा, उस दिन कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह मुझसे हिजाब कर ले। ये चीजें हैं डरने की, ये चीज है डरने की कि अल्लाह से कहीं मैं दूर ना हो जाए, वो मुझे अपने से दूर ना कर दे मेरे किसी गुनाह की वजह से, ये है डरने की चीज। और हमने खौफ किन चीजों के बनाए? तो इस चीज से खौफ करना चाहिए कि अल्लाह हम कहीं जहन्नम के साथी ना बन जाए। तो वो लोग जो उन्होंने कुफर किया, जिन्होंने तकजीब की अल्लाह की आयात की, वो अल्लाह की नाराजगी की में आ गए और जहन्नुम के साथी बन गए इवेंचुअली। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए। अब यहां तक ना, ये जो 86 आयत है, यहां तक लिख लीजिए कि यहां तक जितने भी अहकामात आपको बताए जाने थे वो बताए जा चुके हैं। आप जो सूरह मायदा में आने थे ना, जितने भी बातें अहकाम शरीयत, वो सब आ चुके हैं। अब क्या है, अब जैसे एंड में जाके एक तरह से ताकीद की जाती है ना, आप किससे बात करते रहे फिर जब बिल्कुल उसको दरवाजे पे छोड़ने जाते हैं तो आप कहते हैं भूल ना जाना, फिर ये बातें फिर दोहरा देते हैं। आप बच्चों को काम कहते हैं जाते वक्त फिर से कह देते हैं देखा याद रखना ये फिर चीज। तो अब ये आयत का इख्तिताम आ रहा है, यहां से अब आगे जितनी भी आयात आएंगी वो असल में समझ लें कि खुलासा ही है पिछली जो बातें थी उन्हीं का, या कुछ डिटेल पिछली बातों की जो थी वो इसके अंदर आपको मिलेगी, ठीक है। तो कोई नई बात नहीं अब आएगी। हम पहले पढ़ चुके हैं अहकामाते हलाल व हराम। अब हलाल और हराम के जुमरे में जब बात आती है, और इंसान नेक बनना चाहता है, मुहसिनीन में से होना चाहता है, वो चाहता है कि बस अल्लाह का कुर्ब मुझे मिल जाए, तो बाज़ औकात उसके लिए वो कुछ ऐसे भी काम करने लगता है जो सही नहीं है। और वो उनमें क्या है, मिसाल के तौर पे वो चीजें अल्लाह ताला ने जिनको हलाल किया उनको भी अपने ऊपर हराम कर लेता है। जैसे वो सोचता है मैं पता नहीं जोगी बन के जिंदगी गुजारू, जैसे पिछली कौमों में भी ऐसा हुआ था, हर मजहब में तकरीबन ऐसी चीजें रही हैं कि उनमें भी ईसाइयों में मसलन रहबानियत नहीं थी उनके मजहब में, ऐसे नहीं था कि उनके मजहब कहता है उनको कि दुनिया छोड़ के बस ये नंस बन जाओ और ये जो पादरी इनके हैं ये इस तरह से बन जाओ और बस, वो से कोई और कलर नहीं पहनते, सिर्फ काला और सफेद पहनती हैं ना, सारी जिंदगी उन्हें शादी नहीं करनी, घरों को छोड़ के वो चर्चेस में रहते हैं, बस वहीं पे अपनी जिंदगी गुजारते हैं और वहीं पे इबादत। और ये उनको मजहब ने नहीं कहा था, इन्होंने खुद अपने ऊपर कर ली कि हम नेक बनना चाहते हैं। इसी तरह हिंदुओं के अंदर भी है, बिल्कुल वो योगी टाइप होके फिर रहे होते हैं और बस फिर उसके बाद कुछ नहीं, हो ना शादियां ना कुछ, ना घरों में रहते हैं, जंगलों में निकल जाते हैं। इसी तरह और भी मजाहिब, इस्लाम का ये तरीका नहीं है। इस्लाम का बहुत बैलेंस दीन है। अब अल्लाह ताला ने यहाँ पे इस हवाले से हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए, ला तुहर्रिमू तय्यिबात, ना तुम हराम करो पाकीज़ा चीज़ों को, मा अहल्लल्लाहु लकुम, जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल कर दिए, वला तअतदू, और तुम ज्यादती ना करो। ज्यादती क्या है इसके अंदर? हद से बढ़ जाना। क्या है इसके अंदर? कि हलाल को हराम कर देना। देखिए, हलाल को हराम करना या हराम को हलाल करना, ये इंसान यानी समझता है ना कि हराम को हलाल अगर कर दिया तो ये बुरा है, हलाल को हराम कर दिया वो भी उतना ही बुरा। ये हमारी यानी अल्लाह ताला ने हमारे इख्तियार भी नहीं दिया कि हम किस चीज को पकड़ के एक सोचे, अच्छा मैं समझती हूँ कि ये हलाल होनी चाहिए, ये हराम होनी चाहिए, और इसके इतने बेनिफिट्स हैं, ये तो हलाल हो, ये इसके इतने नुकसान है, ये तो हराम होनी चाहिए। ये मेरे और आपके करने से नहीं है, या ये मुझे चीज बड़ी बुरी लगती है, इसको तो हराम ही होना चाहिए। ये अथॉरिटी अल्लाह ताला ने अपने पास रखी है, उसको सिर्फ इख्तियार है कि वो किस चीज को बताए ये हलाल है और ये हराम है। तो सबसे पहले तो ये हम खुद अपनी अकल समझ, अपनी पसंद या नापसंद से चीजों को हलाल और हराम नहीं कर सकते। नबी अलैहिस्सलाम को सूरह तहरीम में क्या बताया गया? जरा सी देर के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि अब मैं कभी शहद नहीं खाऊंगा। अल्लाह ताला ने फौरन आयत उतारी, आप क्यों हराम करते हैं उस चीज को जो अल्लाह ने आपके लिए हलाल की? तो एक तो होता है ना, एक हराम करना ऐसे होता है कि मैंने कभी नहीं खाना क्योंकि कोई बीमारी है, मसलन डॉक्टर ने मना कर दिया, वो एक अलग बात है, वो नहीं यहाँ पे कही जा रही। डॉक्टर कई रेड मीट से मना कर देते हैं, कोई और चीजों से, कि आपके लिए भाई जहर है अगर आपने खाई तो, शुगर हो गई, किसी को इतनी हाई लेवल शुगर है कि उसको मना कर दिया उससे मीठे से, तो अब वो इसके अंदर नहीं है। यहाँ पे वो है कि जब इंसान अपने आप को नेक बनाने के लिए या नेक साबित करने के लिए कहे कि मैंने ये चीज नहीं खानी क्योंकि बस मैं नेक बनना चाहती हूँ। इसकी एग्जाम्पल एक आपको इब्ने अबी हातिम में है, ये एग्जाम्पल तो उससे आपको बात और समझ आएगी कि बाद सहाबा ने आपस में कहा कि हम अब खसी हो जाएंगे, यानी हम कभी शादी नहीं करेंगे, हम ऐसे कि जैसे ना मर्द हो जाएंगे, इसी तरह हम दुनिया की लज्जतों को भी छोड़ देंगे और हम बस्तियां छोड़ के जंगलों में जाके लोगों से दूर इस तरह अल्लाह की याद में बस जिंदगी गुजारेंगे। लगता तो ये बड़ा आइडियल है। देखिए ना, आप देखें, जब आप हज और उम्रे के लिए चले, हज पे तो फिर भी बहुत लोग होते हैं, लेकिन आप वैसे हरम वगैरह जाते हैं, उम्रे वगैरह के लिए जाते हैं, बस आपने अपनी अल्लाह अल्लाह की, आप होटल में आए सोए, फिर आप गए, फिर आपने अल्लाह अल्लाह की, फिर वापस आए, ना अगर आपने किसी से बात करनी, ना कुछ किसी से कोई मामला करना, ना बड़ा आसान लगता है और बड़ा मजा भी आता है ना। लेकिन जब दुनिया के अंदर आके अपने घरों में वापस आते हैं तो चैलेंजेस तो यहाँ हैं, वो तो आसान है, ये है असल चैलेंज। जब उसने कुछ कह दिया, उसने झगड़ा खड़ा कर दिया, किसी ने हक मार लिया, किसी ने जुल्म कर दिया, किसी ने कोई ऐसी बात कह दी, कोई ये मसला कोई वो मसला, तब आप क्या करते हैं? ये है असल इम्तिहान। ये तो आसान है दुनिया छोड़ के एक तरफ होके अल्लाह अल्लाह बस करते रहो। तो नबी अलैहिस्सलाम को जब ये बातें पता चली तो आपने उनको बुलवाया, उनसे पूछा, आपने ऐसा कहा है? उन्होंने कहा हाँ। आपने फरमाया तुम देख नहीं रहे, मैं नफली रोजे भी रखता हूँ, नहीं भी रखता, रात को नफली नमाज पढ़ता भी हूँ और सोता भी हूँ कुछ कुछ टाइम रात का, आप सोते भी थे। जबकि आप देखें, बाज दफा हम कहानियां पढ़ते हैं और झूठी सच्ची कहानियां बनाई हुई है, वो फलां जो थे बुजुर्ग, उन्होंने 40 साल तक ईशा की नमाज के वजू के साथ फजर पढ़े, यानी वो सोए ही नहीं पूरी पूरी रात, जबकि जहां पे खास हमें मिलता है, स्पेशल एक ताकीद मिलती है, जब आपने सहाबा को इससे रोक दिया और फरमाया मैं रात को सोता भी हूं, जाहिर है जो बंदा सोएगा उसका वजू तो खत्म हो गया ना। तो जी वो कितने नेक थे, अब आपको कहा जाता है आप भी ऐसे नेक बने, देखो हम तो ऐसे नेक नहीं, इस्लाम तो ये नहीं कहता, इस्लाम बिल्कुल नेचुरल दीन है। और आपने फरमाया मैंने निकाह भी रखे कर रखे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादियां भी की, और यही आपका तरीका है। सुनो जो मेरे तरीके पर हो वो तो मेरा है, और जो मेरी सुन्नतों को ना ले वो मेरा नहीं। कि कोई बंदा कह दे मैं तो कभी शादी नहीं करूंगा इसलिए कि मैंने तो बस ऐसे ही रहना, क्योंकि शादी होगी गहरा बच्चे होंगे बीवी होगी घर के खर्चे होंगे फिर उनके मसले होंगे, तो ये मुझे डिस्ट्रैक्ट करेंगे मेरी इबादत से, तो मैं इसलिए शादी नहीं करता थी। ये नहीं आपकी सुन्नत है, समझाइए कि नेक बनने के लिए इन चीजों को इख्तियार करना, कुछ चीजों को छोड़ देना, ये हलाल को हराम बनाना है। और देख लें फिर जिन्होंने ऐसा किया है ना, आज उनकी कहानियां देख लें। अभी पिछले दिनों भी ये एक कहानी आई भी थी कि बहुत पहले 30 साल पहले एक नन का कत्ल हुआ था। वो बेचारी नन बनने के लिए गई, और उसका कत्ल किस वजह से हुआ कि उसने एक नन और एक पादरी को गलत काम करते हुए देख लिया था। तो आप ये देखें कि इनमें ये लोग कहते तो हैं हम शादी नहीं करते, मगर इनके अंदर खाते की आप कहानियां कभी सुने तो आपको पता चलेगा कि कितनी करप्शन है अंदर। वो जिना करने लगे हैं बजाय इसके कि वो निकाह ही कर लेते, क्योंकि इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने ये एक नीड तो रखी है ना, एक जरूरत है उसकी, इसी से दुनिया का निजाम चल रहा है, इसी से नस्ल इंसान नहीं आगे चलेगी। अब उसको हराम जगह पे निकाल रहे हैं, हलाल को उन्होंने हराम कर दिया इस वजह से, जो हराम का रास्ता रह गया फिर, क्योंकि हलाल रास्ता तो उन्होंने इख्तियार नहीं करना। तो अल्लाह ताला ने जो हमारे लिए अहकाम रखे हैं उनमें इतनी खैर है, इतने हमारा ही भला है, बजाय इंसान किसी गलत काम में पड़ जाए निकाह करो, रात को सो भी और इबादत भी करो, नफली रोजे भी रखो। ऐसे नहीं कि हमेशा ही रोजे से रहना, हमने कभी रोजा छोड़ना ही नहीं है, साल साल गुजर गए रोजे पे ही। सबसे प्यारा अल्लाह ताला को रोजा किसका था? दाऊद अलैहिस्सलाम का, एक दिन रोजा रखते थे एक दिन छोड़ते थे। हमारे नबी अलैहिस्सलाम की कितनी प्यारी सुन्नत, मंडे और थर्सडे का रोजा रखने की, अयामे बीत के रोजे रखने की। तो इस्लाम ये नहीं कहता हराम कर लो अपने ऊपर सारी चीजें। इसी तरह देखें अब बुखारी और मुस्लिम में है कि लोगों ने उम्महातुल मोमिनीन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमाल की नस्बत सवाल किया, फिर बाज ने कहा, बाज साहबा ने कहा हम कभी गोश्त नहीं खाएंगे, इसलिए कि गोश्त से जाहिर है गर्मी आती है इंसान के अंदर और फिर उसकी शहवत ज्यादा होती है। बाज ने कहा हम निकाह नहीं करेंगे, बाज ने कहा हम बिस्तरों पर ही नहीं सोएंगे। जैसे बाज लोग ना इस चीज को बड़ा नेकी समझते हैं, हम उनके घर गए वो तो बिस्तर ही नहीं उन्होंने रखे हुए थे, वो तो जमीन के ऊपर बैठे हुए थे, वो तो बस दुनिया की कोई उनको नहीं परवाह, बस कोई सामान नहीं उनके घर में, कोई कुछ नहीं। तो ये अगर वो ये समझ के कह रहे हैं कि इससे हम नेक होंगे और हलाल जरिया है भी, लेकिन वो नहीं इस्तेमाल करते क्योंकि हमने बस नेक किसी में होना है कि हमने आपको मुश्किल में डालें, सख्ती में डालें, हम मैट्रेस रखेंगे कोई गद्दे बिस्तरे बिछाएंगे तो उससे हम शायद नेक नहीं होंगे, तो हम सख्त फर्श पे लेटेंगे। अगर नेकी समझ के ये कर रहे हैं ना तो इसमें कोई नेकी की बात नहीं। हाँ अगर ऐसी बात है कि हम ये सोचते हैं कि हम भाई नरम बिस्तरों पे सोते हैं तो उसकी वजह से हमारी आंख नहीं खुलती, हम एसी चला के सोते हैं तो उसकी वजह से सोए ही पड़े रहते हैं, फजर भी कजा हो जाती, अब मैंने नहीं एसी में सोना, वो एक अलग बात है, वो ठीक है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं मैं एसी नहीं चलाऊंगी इसलिए क्योंकि अगर एसी होगा तो फिर मैं ज्यादा मतलब दुनिया की पता नहीं वो इस्तेमाल कर रही हूँ, कोई लग्जरीज में पड़ गई हूँ, मैं तयुशात में पड़ गई हूँ, मैं गर्मी के अंदर रहूंगी, एसी है भी सामने मेरे पास, पैसे भी हैं उसको बिल देने के, लेकिन मैं नहीं करना चाहती क्योंकि मैं बस नेक बनना चाहती हूँ, नेक रहना चाहती हूँ, और मैं अपने आप पे जितनी सख्ती करूंगी ना अपने नफ्स पे उतना ही अच्छा, तो ये कोई बात नहीं है। ठीक है, तो फिर जब उन्होंने ये कहा था ना सहाबा कराम में से बाज ने कि अब हम बिस्तर पे ही नहीं सोएंगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पता चला था तो आपने उनको भी यही कहा था, जैसे मैंने आपको ये बात बताई कि देखो मैं तो ये गोश्त भी खाता हूँ, मैं निकाह भी करता हूँ, मैं सोता भी हूँ, मैं तहज्जुद भी पढ़ता हूँ, रोजे भी रखता हूँ, नहीं भी रखता हूँ, फिर तुम मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ रहे, जो मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ेगा वो मेरा नहीं है। ठीक है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि इस्लाम ना बैलेंस लेके चलने को आपको कहता है, ना तो बिल्कुल ही ऐसे हो जाए कि बस इतने ही खुले कि कोई हराम का भी एहसास नहीं कि ये चीज हराम है, हराम में मुंह मारते जा रहे हैं, कोई परवाह ही नहीं है। सोए हैं तो सोए ही पड़े रहते हैं, निकाह किया तो साथ और भी जिना के चक्कर लगे में और भी कई चीजें की हुई हैं और छुपी दोस्तियां रखी हुई हैं। इसी तरह अगर खाते हैं तो खाते ही चले जाते हैं, कोई उसकी लिमिट ही नहीं है, ये भी सही नहीं है। इतदाल इतदाल क्या है, तो हदूद के अंदर रहना जरूरी है। तो इस्लाम याद रखें ये नहीं आपको कहता कि हलाल चीजों को आप छोड़ दें, जबकि आप उनको हलाल तरीके से पा सकते हैं। ये नहीं आपको कह रहा कि आप हलाल चीज है तो चाहे किसी की चीज है वो उठा कर खा लो, क्योंकि मेरे देखे अल्लाह ने तो हलाल की भी है, मैं चोरी करके खा लूंगी नहीं। अगर नहीं आप ले खा सकते तो नहीं है, लेकिन कुछ चीज हलाल है अपने ऊपर खुद ना हराम करो, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये जो चीजें बनाई किसके लिए बनाई है, तुम्हारे लिए बनाई है। जो हलाल चीजें हैं वो तुम्हारे खाने पीने इस्तेमाल करने के लिए बनाई है। तो तुम समझते हो नेकी और तकवा ये है कि मैं इनको हराम करूंगी तो मैं नेक बनूंगी, ठीक है? बात समझ है आ गई होगी उम्मीद है। तो हद से ना बढ़ो, ये भी हद से बढ़ना है। हम सोचते हैं हद से बढ़ना सिर्फ ये होता है कि हमने हराम को हलाल किया है, हलाल को हराम करने में भी हद से बढ़ जाना, ये भी हद से बढ़ जाना है। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, अल्लाह ताला नहीं मोहब्बत करता, नहीं पसंद करता उनको किनको जो हद से बढ़ने वाले। अब किसी ने कहा जी मैं तो कुछ भी नहीं खाती, मैं कहीं पे भी चली जाऊं मैं कुछ भी नहीं खाती, क्यों? इसलिए कि इस चीज का ये है, उस चीज का ये है, ये तो छना हुआ आटा है, ये तो फलां है, और ये तो आपसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं खाया था, तो उन्होंने इसलिए नहीं खाया था, उनको मुयस्सर ही नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आके किसी ने कोई चीज दी हो तो आपने कहा कि मैं तो इतना नेक हूं मैं नहीं ये खाऊंगा, ऐसे नहीं था। ये अपने नेकी के इजहार के लिए उनको मुयस्सर ही नहीं थी, इस कदर फकरो फाका था। अब आपको मिल भी रही हो, हलाल रास्ते से भी मिल रहा हो, लेकिन हमने नहीं खानी बस, क्योंकि हम बस परहेज बहुत करते हैं। ऐसा जो परहेज नेकी को सोच के किया जाए ये सही नहीं, बल्कि खाएं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। कोई चीज पहने तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह तूने मुझे ये दिया। मतलब गर्मी में कोई लोग सोचते हैं कि मोटे कपड़े पहन के और इस तरह हो जिसमें इंसान बिलकता रहे वो पहन के रखेंगे तो ये हम कितने नेक हो गए। नहीं, अगर आपको ऐसे कपड़े मुयस्सर हैं जिसमें आपको गर्मी ना लगे, जो अच्छे हैं, थोड़ा कीमती है लेकिन आपको उसकी वजह से जिस्म को आपको आराम पहुंचता है, तो कोई उसके अंदर हरज नहीं, ठीक है? अच्छा, इसी तरह एक और भी रिवायत जो हमें पता चलती है वो ये कि हजरत उस्मान बिन मजून जो थे, उस्मान बिन अफान नहीं है, उस्मान बिन मजून, उन्होंने अपनी बीवी से बिल्कुल ताल्लुक ही खत्म कर रखा था, कि मियाँ बीवी के ताल्लुकात से बिल्कुल अलग थे। तो एक दिन उनकी बीवी जो थी हजरत खौला, वो हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला के पास आई, वहां पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अजवाज भी थी। तो उन्होंने जब देखा कि ये तो बिल्कुल ही बिखरी हुई हालत में है, बिल्कुल ही इनका कोई हार हुलिया ही नहीं है, ना कंघी की हुई है, ना कोई चोटी, ना कोई कपड़ों का कोई एहसास है, ना सफाई का, ना अपने आप को कोई सिंगार करने का, तो क्या बात है? हजरत खौला ने फरमाया कि मुझे क्या सिंगार की जरूरत है, इतनी मुद्दत गुजर चुकी है, मेरे शौहर ने तो मेरी तरफ कभी तवज्जो ही नहीं दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पता चली तो आपने हजरत उस्मान को बुलाया, तो उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि मैंने इसलिए छोड़ा हुआ है कि अल्लाह की इबादत हो और मैं बस बिल्कुल यानी कॉन्सेंट्रेशन के साथ फोकस करके अल्लाह की इबादत कर सकूं। मेरा इरादा है कि मैं तो बिल्कुल खसी हो जाऊं, कि तो औरतों के काबिल ही ना रहूं, ना मर्द हो जाऊं। आपने फरमाया मैं तुझे कसम देता हूँ, जा अभी जा अपनी बीवी से मेल कर ले और उसे बातचीत कर। जवाब दिया रसूल, इस वक्त तो मैं रोजे से हूँ। यानी उनका इतना वो हाल था कि रोजे से एवरी डे और रखा हुआ रोजा और बीवी के पास भी नहीं जाना, रातों को इबादत हो रही। फरमाया रोजा तोड़ दो, और उन्होंने फिर ऐसा ही किया। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों ये तुम्हारा क्या हाल है कि कोई बीवियां हराम कर रहा है, कोई खाना पीना छोड़ रहा है, कोई सोना छोड़ रहा है, तुम नहीं देखते कि मैं ये सब कुछ करता हूं? तो देखिए दोनों एक्सट्रीम्स गलत हैं। जब कुछ लोग दीन की तरफ आते हैं तो वो इस एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, जो लोग दीन से निकलते हैं वो दूसरी एक्सट्रीम की तरफ चले जाते हैं। तो मुअज्जिन हर तरह के बुरे हैं, उनसे अल्लाह मोहब्बत नहीं करता। अल्लाह अकबर। वकुलू मिम्मा रज़ाकुमुल्लाह हलालन तय्यिबा, और खाओ उसमें से जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है हलालन तय्यिब। देखिए कितनी प्यारी हमने पहले बात पढ़ी थी ना, कुलू वशरबू वला तुसरिफू इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुसरिफीन। खाओ पियो इसराफ ना करो, बस इतना भी ना ऐसे खाओ कि बस खाना ही जिंदगी का मकसद बन जाए, ये भी ना करो, इसराफ ना करो। लेकिन ये भी बुरा है कि खाना पीना ही छोड़ दें, हलाल को भी छोड़ दें, तय्यब को भी छोड़ दें। नहीं, खाओ जो अल्लाह ने तुम्हें रिस्क दिया है, हलाल है जो और जो तय्यब है। तय्यब कौन सा होता है? पाकीजा। बाज दफा कोई चीज हलाल होती है लेकिन वो पाकीजा नहीं होती। मिसाल के तौर पे क्या, अब एक मसलन चिकन हलाल है लेकिन वो गल सड़ गया, उसमें स्मेल आ रही है। अब चिकन तो नहीं गलता सकता, मतलब उसमें वो खराब हो गया तो उसको वो तय्यब नहीं रहा। कोई फल है वो मसलन गल सड़ गया तो उसको ना खाए, तबीयत नहीं मानती ना, जिसकी तरफ तबीयत का रुझान ना हो, वो सब फिर उसमें आ जाती है कि जो तय्यब नहीं, तबीयत नहीं मान रही है उसकी, तबीयत उसे कराहत करती है या तबीयत नहीं उसको चाहती है। अब आपको कोई कोई टिड्डी खाए, अब वैसे तो वो हलाल है लेकिन तबीयत नहीं मान रही, तो वो जिससे फिर तबीयत भी मायल हो, जो पाक साफ भी हो, गला सड़ा ना हो, गंदा ना हो, तो खाना मना नहीं है। कोई इस्लाम को कोई ये नहीं कि आपसे को खाने पीने का बैर है कि भाई खाने पीने बंद करा दो इनके सबके, नहीं खाओ। लेकिन खा के फिर क्या करो, शुक्र अदा करो। और फिर खाओ भी ऐसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे हमें कितना प्यारा तरीका बता दिया कि खाना है तो फिर ये तीन हिस्से समझ लिया अपने स्टमक के, कर ले एक हिस्सा खाने के लिए, एक पानी के लिए और एक हवा के लिए। ये तो दाल है ना ये। अब ना खा के सोचना कि मैं नेक बहुत बन रही हूँ क्योंकि मैं नहीं खा रही, और जो चीज मेरा दिल कर रहा है वो हलाल भी है तय्यब भी है, मेरा दिल भी कर रहा है खाने का, मैं खा सकती भी हूँ, लेकिन बस मैंने खाना नहीं है क्योंकि मैं नफ्स को मार रही हूँ, ये गलत है, ये इस्लाम नहीं कहता आपको। हाँ बाज दफा कुछ दिन के लिए कोई चीज आप छोड़ सकते हैं कि भाई ये चीज खाती हूँ ना मुझे नींद बड़ी आती है, फिर मैं उठ नहीं पाती रात को ये चीज खाते हुए, तो वो एक अलग चीज है। आप थोड़ा खा ले, जरूरी तो नहीं कि आपने बहुत ही ज्यादा खाना, लेकिन अब नहीं मैंने नफ्स को कुचलना, तो ये सही नहीं है। वत्तकुल्लाहल्लज़ी अल्लाह से डरो, वो जात तुम जिसके ऊपर ईमान लाने वाले, यानी ये अल्लाह की हदें हैं, ये अल्लाह ताला ने हलाल और हराम के अहकाम दिए हैं, इनको मानो, अल्लाह से डरते हुए जिंदगी गुजारो। तो ये कह देना कि मैं नफ्स को जितनी तकलीफ दूंगी उतनी नेक बन जाऊंगी, ये दुरुस्त रवैया नहीं। डरो अल्लाह से। ला युआखिदुकुमुल्लाहु बिललग्वी फी अयमानिकुम। अच्छा, अब आपने देखा शुरू के अंदर भी औफू बिल उकूद की बात आई थी कि अपने माहिदे वगैरह, अपने कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह पूरे किया करो। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया ना जो बातें भी वहां पे आ चुकी हैं, अब ये भी हलाल हराम की भी बात आयत नंबर 3 में आ चुकी थी, आयत नंबर 1 में आपके वो वादे पूरे करने की बात आई। अब क्या है कि अल्लाह ताला तुमसे लव बातों के बारे में, तो कस्मों के बारे में तो नहीं सवाल करेगा, वलाकिन युआखिदुकुम बिमा अक़दतुमुल अयमान, लेकिन वो तुमसे सवाल करेगा किस चीज के बारे में, यानी पकड़ करेगा, मुआखजा करेगा, हिसाब किताब करेगा उन कस्मों के बारे में जो तुमने मजबूत गिरा बांध ली। तो कस्में ना 3 तरह की होती हैं। एक कसम तो लव कसम होती है, जैसे यहाँ पे कहा गया कि अल्लाह ताला तुमसे लव कसमों के बारे में नहीं पूछेगा। सूरह बकरा में भी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। और लव कसम कौन सी होती है, जो ऐसे ही जैसे बैठे बैठाए कुछ लोगों का तकिया कलाम ही होता है, कसम से मैं तो वहां में, कसम से मैंने तो, या ये अरबों का तो बहुत ही ज्यादा है, इनकी तो बात पूरी नहीं होती है, वल्लाही तल्लाही बिल्लाही इस तरह कर ये हर बात को करते हैं आदतन, जैसे कोई नियत इरादा नहीं होता, बस वल्लाही ऐसे कह देना बस। तो इस पे कोई मुआखजा नहीं क्योंकि ये कोई इरादे के साथ नहीं खाई गई, ये बस ऐसे ही यानी आपका पार्ट ऑफ स्पीच है। दूसरी कसम वो होती है जिसको हम उसमें करेंगे गमूस, गैन मीम वाओ सीन। गमूस कौन सी कसम होती है? ये झूठी कसम को कहते हैं, झूठी कसम को, यानी इंसान को पता है कि ऐसा नहीं है। यमीने गमूस, यमीने गमूस लेकिन झूठी कसम। इंसान जानता है कि ये बात गलत है, फिर भी वो कहता है। मसलन बहुत सारी पास्ट की बातें खास तौर पे, मैं फ्यूचर की भी हो सकती हैं, लेकिन पास्ट की बातें खास तौर पे इंसान को यकीन होता है ऐसा नहीं था, नहीं अल्लाह की कसम है मैंने तो ये बात ही नहीं कही, हालांकि आपको पता है आपने कही, अल्लाह की कसम मैंने तो उसको इस तरह से देखा था, अल्लाह की कसम है वो ये कह रही थी, हालांकि आपको पता है उसने नहीं ऐसा कहा और आपने उसको ऐसा नहीं देखा, लेकिन आपने कसम खा ली अपने आप को सच्चा दिखाने के लिए। और इसी तरह अल्लाह की कसम है तुम्हें ना कल पैसे दे दूंगी, वापस दे दूंगी, और आपकी कोई नियत नहीं है, कोई इरादा नहीं देने का। फ्यूचर की भी हो गई ना ये, एक पास की मैंने आपको मिसाल दी, फ्यूचर की देते, आप उसे चीट कर रहे हैं, उसे धोखा दे रहे हैं, लेकिन अल्लाह की कसम है मैं तुम्हें ये वापस कर दूंगी, मैं तुम्हें वादा करती हूँ, मैं तुम्हें कसम खाती हूँ। तो अब आपने जो कसम खाई है, आपके अंदर इरादा ही नहीं है कि आपने पूरी करनी है, आपने तो उसे चीट कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, लेकिन कसम खा के तो आपने उसे निकलवा लिए पैसे या कोई भी और चीज। तो ये क्या है? यमीने गमूस। अब तीसरी कसम है यमीने मुनाकिदा। यमीने मुनाकिदा क्या होती है? मुनाकदा, सॉरी मुअक्कदा, नून को निकाल दे, मुअक्कदा, अकद से अकद होता है ना, जैसे हम कहते हैं अकदे निकाह। तो मीम लिखे आइन कौफ दाल और गोलता, मुअक्कदा, यानी जो वो कसम जो पक्की खाई जाती है, इरादे से खाई जाती है, नियत से खाई जाती है, और इंसान का इरादा भी होता है कि मैं इसको पूरी करूंगा। मसलन आप की कसम खा लेते हैं कि मैं कल आपके घर आऊंगी, आपका इरादा है, ऐसे ही नहीं खा रहे हैं उसको जस्ट बहलाने के लिए, बल्कि आपका इरादा है, लेकिन आप कल नहीं आ सके, कोई ऐसी परेशानी हो गई, कोई ऐसा मसला हो गया, तो अब क्या, इसका क्या करें? तो अब ये तीन कसमों के तीन अलग अलग अहकाम हैं, इसलिए इनको समझ लें। पहला तो मैंने आपको लगव बताया ना, लाम वाइन वाव, उसके ऊपर तो कोई मुआवजा नहीं, जैसे यहाँ पे आ गया ये लफ्ज भी लिखा हुआ है। दूसरी कसम यमीने गमूस, जो झूठी कसम है, याद रखिए इसका कोई कफारा नहीं है। क्यों नहीं कफारा इसका? इसलिए कि कफारा गुनाह को धोने के लिए होता है, कफारा ये है कि यहाँ पे मेरा गुनाह खत्म हो जाए, उसको आपने यहीं पे उसको कफारा अदा करके उसके बराबर कर दिया उसको। इस बंदे के लिए तो बस तौबा इस्तग़फ़ार है, ये तो अब अल्लाह के पास ही जाएगा। तो फिर किस टाइप की वो कसम थी, कितने उसके कॉन्सिक्वेंसेस थे, क्या उसके बारे में हुआ, तो वो तो अब अल्लाह के पास ही फैसला हुआ कि अल्लाह उसको माफ करता है या नहीं करता। ठीक है, इसलिए उसको कफारा रखा ही नहीं गया, क्योंकि कफारा करके तो आपने जान छुड़ा ली अपनी ना। हाँ यमीने मुअक्किदा जो है इसका है कफारा, इसका कफारा जो है वो आगे आ रहा है, ये जो अब हम आयत पढ़ने जा रहे हैं इसमें इसका कफारा बताया गया है। ये मतलब नहीं है कि जो आगे हम पढ़ने जा रहे हैं किसी किस्म की भी झूठी सच्ची कसमें खा के, झूठी गवाहियां दे के, झूठा किसी के ऊपर इल्जाम लगा के कसम खा लें और उसके बाद कोई बात नहीं, हम बाद में कसम तोड़ लेंगे, हम ये कफारा दे देंगे। तो याद रखें झूठी कसम जो यमीने गमूस है उसका कोई कफारा ही नहीं, सिर्फ यमीने मुआक्किदा का कफारा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका किसी काम करने का इरादा भी था, या आपने कहा मैं इतने रोजे रखूंगी, नजर मान ली आपने, या कोई और किसी से वादा कर लिया आपने, तो अब वो आप नहीं पूरा कर सके फॉर वॉट एवर रीजन, तो अब क्या है? अब हमारे देखें, हमारे यहाँ अक्सर ये बात मशहूर है 3 रोजे रख लो। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे अल्लाह ताला ने क्या बताया, और इसको आप लिख लें। एक तो हमारे लोगों का ना शौक बहुत होता है मन्नतें भी मांगने का, जब कोई काम नहीं हो रहा होगा इतने जोशो खरोश के साथ ऐसी बड़ी बड़ी मन्नतें मांग लेते हैं, मैं तो इतने 1000 नफल पढ़ूंगी, या मैं तो फलाना इतने रोजे रखूंगी, मैं तो ऐसे करूंगा, उसके बाद हिम्मत होती नहीं करने की। तो पहले तो सोच समझ के, क्योंकि नजर भी जो है ना वो एक इंसान का अहद है, एक कसम है जो वो खा लेता है कि अब मैं अब ये काम करूंगा, अपने ऊपर खुद ही फर्ज कर लेता है किसी चीज को, उसका भी यही कफारा है। तो पहले तो ऐसी नजरें ना माना करें, और अगर मान चुके हैं पास में आज तक नहीं पता था तो उसका ये कफारा अदा कर दें। तो अब देखते हैं वो लोग जो कहते हैं 3 रोजे रख लो, इसकी क्या हैसियत है। तो पहले देखते हैं फकफारा तुहू, तो कफारा उसका कौन सी कसम का, अक्कतुमुल अईमान, जो मैंने आपको बताई यमीने मुअक्किदा, अक्कद से इसी से जो ये लफ्ज है, इसका कफारा है इत्आमु आशाराती मसाकीन, खाना खिलाना 10 मिसकीनों को, मिन औसत, औसत दर्जे का, दरमियाने दर्जे का। और बाज उलमा ने कहा औसत वसत से है, और वसत जो होता है उम्मत को भी उम्मते वसत कहा गया, और मतलब है कि बेहतरीन उम्मत, तो बेहतरीन वाला तुमने खाना खिलाना है। अब इस इनको ना इस आयत को या तो आप हाईलाइट कर लें या आप इसके हुक्म को याद कर लें प्लीज, क्योंकि ये आए दिन मेरे पास सवाल आते हैं कि हम क्या करें, ऐसा हो गया, ये हो गया, अब इसका कफारा क्या है, इस कसम का कफारा क्या हुआ। तो फिर आपको याद होनी चाहिए कौन सी कसमें हैं और इनमें से कौन सी वाली का कफारा होता है, कौन सी का कफारा नहीं होता। तो अब क्या है, 10 मिसकीनों को खाना खिलाना, चले अगर आप बहुत बेहतरीन इसका माना नहीं भी लेते तब भी एवरेज लेवल का खाना खिलाना। अच्छा, अभी इसके अंदर भी फौरन सवाल आता है, हम तो इस मुल्क में रहते हैं तो क्या इस मुल्क में रहने के मुताबिक खाना खिलाएं, या फिर हम जिस मुल्क में भेज रहे हैं पाकिस्तान इंडिया वहां भेज रहे हैं उसके मुताबिक खिलाएं। आप खाना कहाँ खाते हैं, वहां जाके खाना खाते हैं कि यहाँ खाते हैं, यहाँ खाते हैं ना, जिस मुल्क में आप रहते हैं उसके मुताबिक। नहीं, वहां पे तो थोड़े पैसों में खाना किसी को खिलाया जा सकता है इसलिए वहां भेज देते हैं। तो देखिए इस तरह के ना काम ना किया करें, ये तो मतलब ये हेरा फेरियां दीन में भी करते रहना। जब आपको कहा गया मिन औसती मा तो तईमुना अहली को, उसमें से वो वाला 10 मिसकीन वो खाना खिलाओ जो औसत दर्जे का, जो तुम खिलाते हो अपने घर वालों को, घर वालों को खाना खिला रहे हैं जो एक दरमियाने दर्जे का है, वो ही अब घर वालों को भी तो जहां पे आप रहते हैं वहीं पे आपके घर वाले हैं, आपकी फैमिली है जो वो खाना खा रही है, जितने पैसों का, एक टाइम का, दो टाइम का, आपको पता ही होगा, वो आपने देना है, और 10 मिसकीनों को खिलाना है। मिसकीन होने चाहिए, ये नहीं कि घर में सहेलियों की दावत करके उनको खिला दें। अच्छा, अब इसके अंदर कितनी बड़ी हिकमत है अल्लाह ताला की, सुभान अल्लाह, कि ये नहीं कि कोई एक चीज मुकर्रर कर दी गई, इतने शेर, इतने किलो, इतना दिन है, बस जो तुम घर वालों को खिलाते हो। अब हर एक का मयार अलग होगा, आप देखिए अमीर जो है वो अपने घर वालों को कैसा खाना खिलाता है, उसके तो टेबल के ऊपर कभी 2-4 डिशेस से कम डिश ही नहीं होती। अगर चावल है तो रोटी भी है, रोटी है तो गोश्त भी है, गोश्त है तो सब्जी भी होनी चाहिए, और डिजर्ट भी होना चाहिए, और एपिटाइजर भी होना चाहिए, और फलाम भी होना चाहिए। तो उनका तो एवरेज खाना इस तरह बनता है, और एक जो गरीब है उसने बस दाल रोटी खानी है वो उस तरह की खिला दे फिर, ठीक है। तो हर एक बंदे का अपना खाने का भी यानी मयार होगा, कोई स्टैंडर्ड होगा, उसके मुताबिक ही तुमने देना है खाना। चाहे तो आप खाना दे दे दावत पे बुला के, यानी उनको मिसकीनों को, गरीबों को बुला के, उनको घर में बुला के खाना दे दिया, खिला दिया, या फिर उनको साथ खाना दे दिया वो ले जाए, या फिर उनको सारा राशन दे दिया उसका, बस लेकिन देना, चाहे एक कोई 10 दिनों का दे दिया, चाहे 10 को दे दिया एक दिन का। औ किस वतु हूं, या कपड़ा पहनाओ, औ तहरीर रकबह, या फिर एक गुलाम आजाद करो। आप देख रहे हैं कि लेस से मोर, मोर मोर की तरफ जा रहा है, यानी सबसे कम पैसों में तो खाना है आ जाता है, फिर उससे ज्यादा पैसों के कपड़े, कपड़े भी उलमा कहते हैं ऐसे नहीं है अब आपके स्काफ दे दें किसी को, चलो मैंने कपड़े दे दिए, नहीं, कपड़ा वो जिससे सतर ढक जाए, और औरत का तो सतर पूरा ही होता है, फिर इतना कपड़ा देना चाहिए। अब देखिए ये भी 10 को देना है, ठीक है, इन 10 को या तो खाना खिला दो जो उस स्टैंडर्ड का जो आपके अपने घर में खाया जाता है, या फिर उन 10 को कपड़े पहना दो, तो ये जरा ज्यादा महंगा हो गया ना, या फिर एक गुलाम आजाद करो, ये उससे भी ज्यादा महंगा होगा। गुलाम कोई सस्ते तो नहीं थे ना, वो बड़े महंगे होते थे। तो दीन के अंदर बेटर से बेटर होना चाहिए, ना कि हम नीचे से नीचे जाएं। खाना भी मैं वहां के मुताबिक दे दूंगी, जो बिल्कुल रोटी किसी तंदूर से 10 रुपए की मिलती होगी, वो एक रोटी ले ले और वहीं से सालन ले ले 10 का, वो आपका 1 डॉलर भी नहीं बनता। तो आप क्या 1 डॉलर से भी कम का खाना खाते हैं घर में? ये तो नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम आके इसके अंदर भी देखे कैसे लूप होल्स निकाल लेते हैं। अल्लाह ताला ने भी फरमा दिया जो घर वाले खाते हैं। अब इसमें कहाँ है 3 रोजे? इसमें तो कहीं पे भी नहीं। लेकिन किसके लिए वो 3 रोजे? फमल्लम यजिद, ये याद रखिए, इसको हाईलाइट करें। जो ना पाए, जो ना खाना खिला सकता है 10 मिसकीनों को, ना 10 को कपड़े पहन, वो भी मिसकीन होने चाहिए। अपने कजन्स कोई कपड़े ना लेके दे देंगे, जो उनके पास पहले इतने सूट हैं, चलो जी तोहफे में दे दिया किसी को, मैंने काम कर दिया मतलब। नहीं, मिसकीन होना चाहिए। या आजाद करना गर्दन का, यानी गुलाम आजाद करना। अब इससे भी देखें, गुलामों की बहुत सारे गुलामों को आजादी मिली। अगर वहां पे भी लोग सिर्फ 10 मिसकीनों को खाना ही खिलाते रहते तो गुलाम ना आजाद होते। लेकिन जो अफोर्ड कर सकता है, जो इतना हर एक इतने लेवल पे नहीं जा सकता होगा, तो जो अफोर्ड कर सकता है वो गुलाम आजाद करते। हर एक चूंकि नहीं कर सकता, इसलिए किसी के लिए 10 मिसकीनों को खाना खिलाना ही कह दिया। वो उसके लिए उतना ही उसका बस है, उतनी जेब है उसकी। लेकिन देखें, ऊपर का भी एक दर्जा है। और आज गुलाम नहीं है तो किसी का कर्जा अदा करवा देना, या जेल में जो लोग कैद है, उन बेगुनाह जो कैद होता है, उसका कहीं मतलब उसके केस के लिए कोई पैसे चाहिए जिससे उसको आजादी मिल सकती है, वो बेचारा नहीं अफोर्ड कर सकता कि वो अपनी आजादी खुद हासिल कर सके, तो उसके लिए पैसे दे देना। तो जो ना पा सके, फिर वो फसुयाम सलासती अय्याम, फिर वो रोजे रखे 3 दिन के। हम इधर कस्में भी धड़ाधड़ तोड़ते रहते हैं, और उसके बाद बस 3 रोजे रख के तो अपना काम भी पूरा किया, ना कोई पैसा खर्चना पड़े और ना कोई कुछ मसला हो, तो ये दुरुस्त नहीं है। ज़ालिका कफ़ारतु अईमानिकुम इज़ा हलफ्तुम, ये कफ़ारा है तुम्हारी कसमों का जब तुम कसम खाओ। ठीक है, इसी तरह बाज दफा लोग कसम डाल देते हैं कि तुम्हें कसम है कि तुमने ये करना है। ये ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कोई ऐसे कसम डाल दे तो फिर उसको पूरा करना चाहिए। यानी फिर उसको जो उसने कसम करी है कि आप, उनको कसम है कि आप मेरी बात सुने, तो वो आप फिर आप सुन लें उसकी बात, क्योंकि फिर वो कसम टूट जाएगी वरना, अगर आपके बस में है, वरना वैसे डालनी ही नहीं चाहिए। इस तरह की इन बातों से जरा परहेज करना चाहिए कि आप मतलब एक, क्योंकि कसम तोड़ना ना एक कोई अच्छी बात नहीं है। जो कसम होती है वो अल्लाह की होती है, इसमें आपने अल्लाह को गवाह बनाया होता है। और अगर दूसरे के ऊपर आपने कसम डाल दी, उसने पूरी ना की, तो फिर क्या होगा? डालने वाले पे गुनाह होगा, तो क्यों खुद को भी गुनाहगार करते हैं? और अगर कोई ऐसी कसम खा ले, मसलन मैंने कसम खा ली कि मैंने फलाने से कभी सारी जिंदगी बात नहीं करनी, मैं मेरा उसके साथ खत्म है ताल्लुक, अब क्या हो? अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तू किसी ऐसी बात पे कसम खा ले फिर उसका गैर उससे बेहतर हो, यानी अब बात करना बेहतर है। देखें, 3 दिन से ज्यादा किसी मुसलमान से बातचीत बंद करना सही नहीं है, तो बेहतर काम कर और अपनी कसम का कफारा दे दे। फिर कसम का कफारा दे दे, जिस तरह किसी ने अगर अब ये कसम खा ली है कि मैंने अपनी बीवी से नहीं कभी ताल्लुक करना, मैं नहीं अब इसके पास जाऊंगा कभी, तो अब उस वक्त गुस्से में कसम खा ली, तो उसके बाद इसको तोड़ देना बेहतर है। बाज ने फिर कहा कि इसका कफारा दे के तोड़ दे, बाज ने कहा कफारे की भी जरूरत नहीं। वैसे तो ना कसमों को कसरत से खाना ही नहीं चाहिए, हर वक्त कसमें खाते जाना, क्योंकि कहीं इंसान स्लिप हो जाए, कहीं कुछ हो जाए, तो फिर एक कफारा है इसका। ऐसे नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं है, इसका कफारा रखा जाना ही पता चलता है कि इसका गुनाह होगा तोड़ने में, तभी तो रखा गया ना कफारा, उस गुनाह को मिटाने के लिए। और झूठ अगर है फिर तो भूल के भी कसम ना खाए, इसलिए क्योंकि ये कसम फिर यहां पे मामला साफ नहीं होना, फिर तो आखिरत में ही जाके साफ होगा। और कितने लोग ऐसी कसमें खा लेते हैं, नहीं ये हमने तो कसम से, हमने तो ऐसे करा देखा, दूसरों पे झूठे इल्जाम, ये सारी कसमें खा खा के कह देते हैं मैंने तो ये खाया ही नहीं, मैंने तो ये लिया ही नहीं, मैंने तो ये बोला ही नहीं। और जिन्होंने नजरें मानी हैं और अब नहीं कर पा रहे, उनको अव्वल तो नजर पूरी करें, लेकिन नहीं कर पा रहे उसको, ऐसे ही कोई बड़ी कसम खा ली है, नजर मान ली है, तो अब वो भी ये कफारा दे के और अपने आप को इससे निकाल लें। और इसी तरह अगर कोई नेकी का काम आपने उसको ना करने की कसम खा ली, मेरी कसम है कि मैं आइंदा कभी भी कसम खाती हूं कि मैं कभी अमर बिल मारूंगा नहीं अनहोन करने करूंगी, क्योंकि मैंने तो इसको देख लिया कि मुझे क्या इसका सिला मिला। अब वो जज्बात में आगे खा तो ली, अब इसका कफारा नहीं है, बल्कि इसको तोड़ देना यही इसका कफारा है, समझ लें, समझ आई ना। या आप कहते हैं मैं बच्चों को समझा से समझा के थक गई हूँ, अब ये तो समझ ही नहीं रहे, मैं कसम खाती हूँ आज के बाद मैंने नहीं इनको समझाना, तो ये तो गलत बात है ना। आपने एक नेकी का काम ना करने की कसम खा ली, तो इस ऐसी कसमों को तो फौरन तोड़ देना चाहिए और उसका कोई कफारा नहीं। ज़ालिका कफ़ारा तु अईमानिकुम इज़ा हलफ्तुम, ये है कफ़ारा कसमों का जब तुम कसम खा लो। ठीक है ना, अब आप अल्लाह ताला ने कितनी आपको दुनिया में इसको मिटाने का एक ये उसकी रहमत है कि एक जरिया दे दिया कि हमारी जान यहाँ पे छूट जाए, वरना ये तो कसमें ही कई हिसाब किताब देते रहते वहां पे, तो फिर क्या होता। वाहफ़ज़ हुआ ईमानकुम, इसका मतलब ये नहीं कि आप कसमों को एक जोक बना लें, कसम खाते रहेंगे कफारे देते रहेंगे, नहीं, हिफाजत करनी है अपनी कसम की। हिफाजत करने का मतलब क्या, पूरा करो अपनी कसमों को। कदालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तशकुरून, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए बयान करता है अपनी आयात को ताकि तुम शुक्र अदा करो। हमारे तो दिल बड़े परेशान हो जाते हैं, हम कहाँ शुक्र अदा करते हैं, हम तो आयतें पढ़ते हैं फिर हम कहते हैं आए हाय अब ये भी हुक्म आ गया, आए हाय अब ये भी करना पड़ेगा, हालांकि आपको पता है इन अहकामात में हमारे लिए कितनी अल्लाह की रहमत है। अल्लाह ताला ने देखे ये रुख्सत दे दी ना हमें, एक एक कफारा बता दिया, तो ये गुनाह यहीं पे धुल सकता है, वरना ये गुनाह है कसम तोड़ना। तो अब ये इसको ना बोझ समझे, हाय अब इतनों को खिलाना पड़ेगा, हाय तो कौन अब करे इतने को कपड़े पहनाने, ये तो बड़े एक्सपेंसिव हो जाएंगे, ये तो ऐसे हो जाएगा, नहीं इसके ऊपर शुक्र अदा करें, शुक्र है अल्लाह जान बख्शी हो गई यहीं पे, थोड़े में छूट गए आप। ठीक है, तो दुनिया में ही अल्लाह ने बता दिया कि ये करके तुम अपने गुनाह को मिटा सकते हो यहाँ पे। अल्लाह ताला हमें माफ फरमाए, अल्लाह ताला हमें ऐसी कसमें खाने से भी महफूज रखे कि बाद में हमें उसको कोई तोड़ना पड़े।